रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर सुग्रीव से अपेक्षा कर रहे हैं कि सुग्रीव हमारी सहायता करेगा। सर्वसमर्थ भगवान सुग्रीव की अपेक्षा क्यों रखते हैं कि भगवान ने सुग्रीव का साथ दिया, सुग्रीव का काम किया, तो भगवान चाहते हैं कि सुग्रीव मेरी सहायता कर देगा तो मेरा उपकार सुग्रीव से हट जाएगा। भगवान किसी का उपकार करके उसको जनाना नहीं चाहते, उसको दबाना नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने कहा सुग्रीव सुदिमोही बिसारी, लक्ष्मण जी तपाक से बांगरे ऐसा मत करना, वो हमारा सखा है, जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं उसको हम अपने द्वारा नहीं मारते। लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी को समझाने के लिए तो इधर रवाना हुए, अब उधर क्या हुआ, इधर बड़े बुद्धिमान हनुमान जी महाराज, उन्होंने विचार किया कि महाराज सुग्रीव तो इस राजकाज में और स्त्री के प्रेम में ऐसे फंस गए हैं कि भगवान का काम क्या, भगवान को ही भूल गए। राम काज सुग्रीव बिसारा, भगवान का काम भूल गए, राम का काम भूल गए। तो हनुमान जी पास में जाकर साम दाम दंड भेद, साम माने शांति के द्वारा, दाम माने थोड़ी कड़क बात के द्वारा, दान के द्वारा, साम दाम भी बोलते हैं, साम दान भी बोलते हैं, दंड और भेद, इन चारों रीतियों से समझाया। सुग्रीव ने कहा रे हनुमान तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। अब देखो सुग्रीव में सरलता थी, सरलता क्या कि कोई आदमी गलती कर ले उस गलती को गलती स्वीकार कर लेता है कि ये तो गलती हो गई, तो फिर वो गलती समाप्त हो जाती है। सुग्रीव ने कहा कि हनुमान तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, संसार के विषयों में मैं तो फंस गया, मेरी बुद्धि संसार के अंदर चली गई, विषयों से घिर गया, मेरा ज्ञान ध्यान सब इधर उधर लुप्त हो गया भाई, अब बताओ क्या करूं, तुम कहो वैसा करूं। सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी महाराज ने कहा कि चारों तरफ बंदर भेज करके आपको सलाह लेनी चाहिए, बंदरों को भेजना चाहिए। अरे हाँ हाँ, अब तुम मेरी ओर से सब बंदरों को सावधान करते हुए कह दो कि तुम सब यहाँ किष्कंधा में 15 दिन के अंदर आ जाना, जो 15 दिन में नहीं आएंगे वो मेरे द्वारा मारे जाएंगे। हनुमान जी ने सब दूतों को बुलाया और भाई और प्रीति नीति देख रही, हनुमान जी ने सबको भय भी दिखाया, प्रेम भी दिखाया और नीति भी दिखाई। ये भय प्रेम और नीति तीनों क्या है, भय तो दिखाया कि देखो आपने ये कैसे समझ लिया कि राम जी ने जब बाली को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देंगे। बाली ने तो राम जी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, आपके लिए तो राम जी ने इतना कुछ किया और फिर आप राम जी को ठुकरा दोगे तो जानते होगे नहीं। तो ऐसा करके भय और प्रीति, प्रीति माने यदि आप भगवान का काम कर लोगे तो भगवान के हृदय में आपका कितना ऊंचा स्थान बनेगा। और नीति, नीति ये बताई कि देखो उनसे उपकार लिया है, उन्होंने हमारा उपकार किया है, इसलिए हमको भी उपकार करना चाहिए। ऐसे सब प्रकार से भय प्रीति और नीति दिखाई। इतने में लक्ष्मण जी आ धमके किष्कंधा में और तम तम आते हुए हाथ में धनुष चढ़ा लिए, मैं एक क्षण में सारे किष्कंधा को जला करके राख कर दूंगा, जारी करऊ पुरछार। तो बंदर लोग आए पैरों में पड़े, महाराज व्याकुल नगर देख तब आये बाली कुमार। सबसे पहले बाली कुमार आया, अरे अंगद, बाली कुमार अंगद क्यों आया हो? अंगद को देखते दया है कि इसके बाप को मारा था। अपने मारवाड़ी कहावत है बाप, इसमें भी आया बाप रो। बाप रो का मतलब बाप मर गया उसके लिए रोने वाला, बापड़ो। वो कहीं करे बापड़ो, बापड़ो का अर्थ है कि बाप मर गयो जरा रोवे, तो बापड़ो बोले। तो अंगद अंगद आया, अंगद के आते ही लक्ष्मण जी का क्रोध था वो सब दूर हो गया। अंगद को छाती, अरे अंगद तेरा बाप मर गया था, तेरे बाप को राम जी ने मारा था, और भी दूसरे क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना। लक्ष्मण अंगद जी ने कहा चलिए महाराज अंदर पधारिए। अंदर ले जा करके महल के अंदर रखा और सुग्रीव को पता चला तो सुग्रीव डरने कांपने, अरे लक्ष्मण जी आए, अंगद ने अच्छा किया उनका क्रोध शांत किया, अब कहा हनुमान तुम जाओ और तारा को लेकर जाओ। तारा को क्यों भेजा? ये बाली की विधवा पत्नी है, अंगद है उसका बाप मारा गया, तारा का पति मारा गया, उसको भेजा तुम जाओ, तुमको देखते दयावान हो जाएंगे, और हनुमान तुम साथ में जाओ सब काम सुधार देना। तो तारा सहित जाई हनुमाना, खूब चरण वंदना की और फिर जो है उनको बैठाया और फिर उनसे बातचीत की और कहा महाराज पधारिए अंदर पधारिए। तो अंदर पधारे हनुमान जी महाराज, तारा, अंगद, ये तीनों के तीनों अंदर ले गए। अंदर ले जा करके और उनको ऊंचे आसन पर बैठाया और लक्ष्मण जी के सामने फूट फूट करके रोते हुए सुग्रीव जी कहने लगे, हे लक्ष्मण जी, इस संसार में विषयों के समान कोई मद नहीं है, जिसके पास जितना ज्यादा सुख सुविधा का साधन है वो उतना ही ज्यादा उसमें कला हुआ अंधा हुआ हुआ है। ये महाराज मेरे जैसे बंदर को क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये मुंह अंधा कर देता है, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं तुम राजा हो, तुम ऐसे, लक्ष्मण जी बड़े, लक्ष्मण जी बोलते तो बड़े कठोर है, हृदय के बहुत कोमल थे लक्ष्मण जी। बड़ा सुख मिला लक्ष्मण जी को। फिर हनुमान जी ने कहा सुनिए महाराज, हमारे महाराज ऐसे नहीं है सुग्रीव जी कि जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, सब जगह बंदरों को भेज रखा है, वो देखो बंदरों के झुंड आ रहे हैं और ये बंदर ऐसे ऐसे विशाल काय, ऐसे ऐसे बलवान बंदर है, ये देखो इस दिशा से भी आ रहे, ये देखो इस दिशा से आ रहे, ऐसे करके बंदरों का झुंड वहां आया। लक्ष्मण जी देखते रहे, ये सारा आकाश बंदरों से ही भर गया, तो चलो चलो अब राम जी के पास चलते हैं। तो सब बड़े हर्षित होकर के राम जी के पास आए, राम जी को आकर के प्रणाम किया और सुग्रीव कहने लगा महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, तो आपकी माया बड़ी प्रबल है, मैं क्या करूं। आपकी दया होती तो इस माया से पिंड छूटता है महाराज, आपकी दया नहीं थी मेरे पर तब तो मैं भी इसमें फंस गया। देखो आजकल के लोग कहते क्या करें, भगवान की माया ही ऐसी है कि हम संसार में फंस गए। अब उनसे पूछा जाए कि संसार से ऊपर उठने के लिए कोई संघर्ष किया क्या? नहीं किया। तो अब वो बोल रहा है कि महाराज आपकी माया बड़ी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे ही राम करो जोई दाया। महाराज मेरी क्या बात करूं, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी। देखो देवता लोग विषयों में फंसे हुए, मनुष्य फंसे हुए और ऋषि मुनि सब इसमें फंसे हुए। महाराज मैं तो एक बंदर हूँ, बंदर मैं पावर, मैं खुद तो खुद पावर हुई और फिर पशु हूँ और फिर बंदर हूँ और अति कामी हूँ महाराज। इसलिए मेरे पर आपकी दया नहीं थी तो नहीं होने से मेरा कोई कसूर नहीं, मैं माया के अंदर फंस गया। भगवान देख रहे हैं क्या महाराज, इस संसार में बताओ तो सही, स्त्री के नयनों के बाणों से किसके कलेजे में चोट नहीं पहुंची, क्रोध का घोर संताप किसके हृदय को नहीं जलाता, लोभ की फांसी में किसका गला नहीं फंसा। महाराज उसी का ही गला नहीं फंसा जो आपके समान है। बस एक आप ही ऐसे हो कि जिनको कभी स्त्री ने नहीं फंसाया, जिनको कभी क्रोध ने नहीं जलाया, जिसने कभी लोभ को जिसको लोभ ने कभी नहीं बांधा। अब ये गुण कोई साधन से होंगे क्या? यह गुण साधन ते नहीं होई तो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये कोई साधन भजन से कल्याण नहीं होता है महाराज, ये तो आपकी कृपा से ही होगा। भगवान इसकी बात का एक भी जवाब नहीं दिए। होता तो ये साधन भजन से, साधन भजन करो, मेरी शरण में आओ, साधन भजन करते हुए तुमको यदि काम क्रोध लोभ से घबराहट होती हो तो मुझे पुकारो, ऐसे ऐसे हो तुम ना। लेकिन तुमने तो कुछ साधन भजन किया ही नहीं, राज मिल गया अर्जुन चला गया राज, तो राज के अंदर फंस गया। तो भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, भगवान हंसने लग गए। तब रघुपति बोले मुसुकाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अरे सुग्रीव तुम हमारा भरत के समान भाई हो। अब भरत के समान क्यों कहा, लक्ष्मण के समान क्यों नहीं कहा? भरत को तो सुग्रीव ने सुना नहीं और लक्ष्मण को देखा है, लक्ष्मण का प्रभाव भी देखा है, लक्ष्मण जी तो लेकर के आए हैं। कितना अच्छा लगता भगवान ये कहते कि आप मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय हो। इसलिए नहीं कहा कि हनुमान जी को पहले कह आए हैं, हनुमान तू मुझे लक्ष्मण से दुगुना प्यारा है। तो लक्ष्मण जी शायद अयोध्या भी जा सकते हैं कि मेरे से दुगुना प्यार तो आपको इसको दे दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि मेरा लक्ष्मण में प्यार कम नहीं है। कोई आदमी अपने भाई को छोड़कर दूसरे से ये कहता हो ना कि भाई मेरे अपने भाई पर इतना विश्वास नहीं जितना इन पर विश्वास है, इसका अर्थ है कि उस पर ज्यादा विश्वास है, नहीं उसके मुंह पर कैसे कहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये भगवान ने हनुमान जी से परसों कहा था, कल परसों। तो इधर राम जी महाराज कहते हैं तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम प्रिय मोई भरत जिमी भाई। तो लक्ष्मण जी की उपमा तो हनुमान जी के साथ दे दी। शत्रुघ्न तो सबसे छोटा है, सबसे छोटे को क्या लाया, इसलिए भरत को कहा। भरत भगवान के हृदय में और हिसाब से बैठा हुआ था ना, तो कहा तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब बताओ, और बात छोड़ो, सीता के लिए क्या करना है ये बताओ तुम। ऐसे इनकी बातें हो रही थी और इधर ही बंदरों का झुंड आया। बंदरों के झुंड को देख करके भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं भी वहां था, वो बानर कटक उमा मैं देखा, मैंने देखा वो। कि महाराज आप उन बंदरों में थे क्या? कि था ना। कौन से बंदर? हनुमान के रूप में मैं ही तो था। देखो हनुमान साक्षात नहीं कहते हुए भी बोलते हैं। राम जी महाराज के पास में सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराज सीता का विलाप करते हुए कहेंगे, ऐसे सीता विलाप करते हुए भगवान कह रहे थे तू मेरा बहुत प्रिय है, तूने तो मेरे पर बड़ा उपकार किया है, तो हनुमान जी महाराज को ऐसे, शंकर जी कहते हैं कि हनुमान जी ऐसे मग्न हो गए तो ए सुनो पार्वती उस सुख को मैं कह नहीं सकता हूँ, उस सुख को कह नहीं सकता हूँ, अर्थात उस सुख का अनुभव हनुमान के रूप में मैंने किया है। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो कर्ण से लेखा, उन बंदरों की संख्या कर गिनती करने चाहे वो महामूर्ख है संसार में। उस सेना की कोई गिनती कर सके, गिनती तो है छोटी सेना है बड़ी, और सबने आकर के राम जी को प्रणाम किया। अब इतनी बड़ी सेना ने और राम जी ने एक एक से कुशल क्षेम पूछा, अच्छा क्यों वही सब ठीक हो ना, सब ठीक हो ना, तो क्या ऐसे कैसे पूछ लिया होगा इतनी देर में। अरे पार्वती यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाय, ये भगवान की कोई विशेष बात नहीं है, विश्व रूप व्यापक रघुराय, भगवान विश्व व्यापक है, वो कितने रूप बना करके मिल सकते हैं, कितने रूपों से एक एक देखते एक एक के सामने भगवान आ सकते हैं, कुछ नहीं है, भगवान अपनी माया से अपने भक्तों से किस प्रकार से मिलते हैं ये उन्हीं पर ही छोड़ देना चाहिए। कह सुग्रीव सबको नमस्कार करके अब सुग्रीव बोलता है, सुनो बांदरों सुनो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज राम जी के काम के लिए अपने को बड़ा भारी प्रयत्न करना है, देश देशांतर से बड़े बड़े बंदर लोग यहाँ आए हैं। मैं समझता हूं कि जो बांदर लोग कभी किष्किंधा आए ही नहीं थे, उनको आने का मौका भी नहीं मिला था, ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे बंदर भी आए हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक महीने के अंदर अंदर आपको सीता की खोज करके यहां सूचना दे देनी चाहिए, एक महीने का समय है। उधर देखो रावण ने भी सीता जी को क्या कहा है, हे सीता हम तुमको एक महीने का समय देते हैं, मास दिवस एक महीने का दिन, एक महीने का समय देते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो एक साल का समय दिया था, और यहाँ जो है तुलसीदास जी महाराज एक मास का समय, मास दिवस मऊ कहा न माना तो में मार भी काढ़ कृपाना, रावण सीता जी को एक महीने का समय देता है, सुग्रीव बंदरों को एक महीने का समय देता है, एक महीने के अंदर आप लोग सीता जी की खोज करके आ जाओ। सज्जनों इतना विशाल भूमंडल था, इसमें तो दिया नहीं है, वाल्मीकि रामायण में आता है वो विशाल भूमंडल, वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, ये बंदर लोग ही जा सकते थे। कैसे वहां सुग्रीव ने बताया इतने पर्वतों के बाद फिर उधर जाओगे, फिर तुमको वहां गुफा मिलेगी, फिर और आगे जाओ और आगे जाना और ऐसे इतने, इतना किसी भी खगोल में भूगोल में शास्त्र में इतना वर्णन मिलता नहीं है जितना वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से वहां पृथ्वी का वर्णन मिलता है, इतना तो भागवत में मिलता तो है, संक्षेप में मिलता है, लेकिन ये बड़ा विस्तार से मिलता है, हर दिशा में बताया है। पर गोस्वामी जी महाराज ने देखा ये प्रसंग लंबा हो जाएगा, उन्होंने नहीं लिखा तो एक महीने अंदर तुम सब जगह जाना, और यदि एक महीना बीत गया और आप लोगों ने सीता जी की खोज नहीं की तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा, ये भी याद रखना। सबने सुग्रीव जी को प्रणाम किया, और इधर हनुमान जी नल और अंगद ये भी आए, एक एक दिशा, पूर्व दिशा में तुम जाओ और पश्चिम दिशा में तुम जाओ, उत्तर दिशा में तुम जाओ, पूर्व दिशा में तुम जाओ, अब दक्षिण दिशा वाले आए। उन बंदरों में जो क्रीम टीम थी, खास जो है बंदरों की खास प्रधान प्रधान योद्धा थे, वो एक केवल अभी एक दिशा की तरफ चले, अंगद नल हनुमंत। तो कहा सुग्रीव ने कहा कि देखो अंगद, देखो नील, देखो हनुमान, जामवंत जी दक्षिण दिशा में जाओ, एक एक चप्पा चप्पा तुमको वहां सीता जी के लिए देखना पड़ेगा। मन से, वाणी से और वचन से आपको यत्न करना पड़ेगा, राम जी का काम सुधारना पड़ेगा। देखो सूर्य का सेवन पीठ से होता है, सूर्य के सामने नहीं बैठते, सूर्य का पीठ सेवन करने से सूर्य अच्छा लगता है। सूर्य के सामने बैठ जाएंगे ना, सूर्य की यहाँ गर्मी लगेगी, थोड़ी देर में सूर्य अप्रिय लगेगा, चाहे कितना ही जाड़ा हो। सूर्य की तरफ होते ही यहाँ ललाट के ऊपर गर्मी पड़ने से जो है सूर्य अप्रिय लगता है, इसलिए सूर्य को पीठ से सेवन करना चाहिए, और आग है वो सामने आग का सेवन करना चाहिए। भाई सूर्य तो इतना दूर है और आग तो एकदम नजदीक है, तो आग की गर्मी यहाँ नहीं आती कि नहीं आती इतनी, इतनी सूर्य की किरणें यहाँ आती है। ये सौर भाग है अपने भी, अपने भी यहाँ शरीर में उष्ण भाग यही रहता है, तो ये ठंडा रहता, ये ठंडा रहना चाहिए। चंदन वगैरह क्यों लगाते हैं, ये स्थल बहुत गर्म रहा करता है स्वाभाविक, इसलिए इसके ठंडा लगा, तो सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादा प्रभावित करती हैं। अग्नि क्यों नहीं करती, अग्नि की जलन है वो यहां तक नहीं जाती है, अग्नि को सामने से, और जो अपना स्वामी होता है उसको तो सब प्रकार से छल रहित होकर सेवा करनी चाहिए। देखो भाई अपना बंदर शरीर है, पर देह धरे कर ये फलु भाई, भजिए राम सब काम भी आई। ये भगवान का भजन है, ये सीता जी की खोज करना है, ये भगवान का काम है। ऐसे सब लोग अपना अपना काम भगवान का काम समझ ले तो वही उनकी भक्ति है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान के चरणों में जो अनुराग रखने वाला है वही बड़ भागी है और वही गुणों को जानने वाला है। अच्छा महाराज, जो प्रणाम करके जा रहे थे तो उनके पीछे में पहले अंगद आए, फिर नल आए, फिर हनुमान जी आए ना, हनुमान जी को भगवान का हनुमान इधर आओ, और उसके सिर पर भगवान ने बहुत प्यार से हाथ फेरा, और वो जो कर मुद्रिका थी, अब देखो कोई तो कहते हैं भगवान के अंगुली में थी, उन्होंने निकाल करके दी। अब ये यदि अंगुली में अंगूठी होगी तो तापस वेश विशेष उदासी, ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि तपस्वी लोग होते हैं वो सोने की अंगूठी नहीं पहनते, और विशेष उदासी का विशेष उदासी। तो ये अंगूठी कहां से आई, ये अंगूठी उस पोटली में से आई जिस पोटली को सीता जी ने डाला था। तो कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका यही कहेंगे कि केवल मुद्रिका बोले ना, तो मुद्रिका तो ये चूड़ी भी हो सकती है, ये भी तो मुद्रिका बोलते हैं गोल्ड को, उसका नाम रिंग, अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं, ये चूड़ी भी हो जाएंगे ना, ये भी जो है मुद्रिका है, ये भी मुद्रिका है, लेकिन ये वास्तव में अंगुली की बात है। तो बहु प्रकार सीते, देखो तुम सीता को सब प्रकार से बोलना, और ये बात जरूर कहना कि कितना अपने में बल है, ऐसा उसको सुना देना, और कही बल विरह है, और विरह भी बताना, विरह माने मैं सीता के विरह में किस प्रकार से व्याकुल हो रहा हूं, ये प्रेम का विरह और बाकी सब प्रकार का नीति का बुद्धि का शरीर का बल, ये दोनों प्रकार की बात कहना, उसको धीरज बनेगा। हनुमान जी महाराज के तो आंखों में जल आ रही, मुझे भगवान ने इसी योग्य समझा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने ये सब राजनीति को सुरक्षित रखते हुए किया, राजनीति को सुरक्षित, राजनीति राखत सुरत राता, क्यों इसमें राजनीति क्या थी, भगवान देख रहे थे कि इनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ये हनुमान है, क्योंकि मेरे से बात की, बड़ी बुद्धिमानी से बात की। सुग्रीव ने ये नहीं कहा था इसको कि तुम जो है वो हम बालिका पक्षपाती नहीं है तो मेरे से मित्रता कराना, ये नहीं कहा था। लेकिन इसके तुरंत बात पैदा होती है, मौके पर जो बात तुरंत पैदा हो कि किस समय क्या करना चाहिए, इसमें ये हनुमान बड़ा निपुण है। अरे चलो सुग्रीव के साथ मित्रता कराते हैं और फिर सुग्रीव कह रहा है ये तुम्हारे दुख का हरण कर, तुम अपना दुख बता दो। तो ये सब बातें देख करके भगवान ने देखा कि ये हनुमान है, ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, बहुत बुद्धिमान वानर है। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। कई प्रकार की राजनीतियां थी इसमें हनुमान जी को इतनी बात कहने में। सबसे बड़ी राजनीति देखो, राजनीति सब तो आजकल भ्रष्ट हो गया कि कोई आदमी बुरा काम करता है, छल कपट करता है, कहते बड़ी राजनीति लगाता है। राजनीति उस समय में बहुत राजाओं के बीच में ऐसी नीतियां, ऊपर से कुछ पता ही नहीं चले और नीति की नीति खेल जाए, व्यवहार को बिल्कुल नहीं बिगड़ने देते थे और प्रेम को भी बिगड़ने नहीं देते थे और फिर भी अपना काम ले लेते थे। ये राजाओं की नीतियां होती थी पवित्र भाव से। तो हनुमान जी महाराज के विषय में राम जी ने राजनीति क्या रखी, राजनीति यही रखी कि तुमने ये सब सुग्रीव के साथ मित्रता करा करके इतना बड़ा संबंध तुमने किया है तो इसका श्रेय भी मैं तुमको ही दूंगा कि सीता जी की खोज का तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। अब सब लोग वहां से चले साहब दक्षिण दिशा की ओर। चलते चलते कोई निशाचर मिल जाता तो उसको मारते पीटते, ऐसे चलते उनको प्यास लगी आई। फिर एक पृथ्वी के विवर भाग में गए हनुमान जी ने कहा देखो अनजान जगह पर आए हैं, पृथ्वी के अंदर विवर के अंदर ही बगीचा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल शांत रहना। हनुमान जी के पीछे पीछे सब चले और हनुमान जी महाराज ने जाकर वहां बैठी हुई एक माई से पूछा, माता हम सबको प्यास लगी है, भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो हम जल पी। कहां से आए हो तुम? हम राम जी के दूत हैं और हम सीता जी की खोज के लिए जा। अच्छा अच्छा अच्छा, तई सब आपनी कथा सुनाई मैं और का। अच्छा ठीक है, राम जी के दूत हो, ये बड़े दिव्य फल हैं, बड़ा दिव्य यहाँ का जल है, तुम जल पियो, फल खाओ, तुम्हारे में बड़ी दिव्यता अलौकिक बल आ जाएगा। हाँ तभी मैंने ये सोचा था कि वो अभी तक राम जी के बंदर आए क्यों नहीं, जिनके लिए ये बगीचा इतना सुरक्षित, जमीन के अंदर सुरक्षित है जहां हर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता और इतने दिव्य फल है, इनको एक बार खा लोगे फिर खाने की जरूरत ही नहीं है। देखो किसी भी रामायण में नहीं आता कि बंदरों की सेना लंका में गई थी तो लंका के सारे फल फूल खा पी करके बराबर कर दिए, ऐसा नहीं आता, किसी रामायण में नहीं आता। क्यों आएगा कि यहां सब कुछ खा लिए पी लिए, उनको भूख ही नहीं लगी, इतने दिव्य वो फल थे। मजनु कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए, तही सब आपनी कथा सुनाई। सब ने बात बताई कि हम ऐसे ऐसे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा तो देखो अब मैं राम जी के पास जा रही हूँ, तुम इसमें घुस तो गए हो, तुमसे निकला नहीं जाएगा। क्यों भैया, हम इस मार्ग से आए थे ना? ना ना, ये माया का है, तुम यदि इसमें से बाहर निकलना चाहोगे तो नहीं निकल सकते। तो मैया अब क्या होगा, उपाय मैं बताती हूँ, तुम राम जी के दूत हो, आंख बंद करो सब। तो सब बंदर आंख बंद करके बैठ गए, जो ही आंख बंद किया मुंदउ नयन बिबर तज जाऊ, पे हूं सीत जनी पछिताऊ। तो वे अपने आप को समुद्र के किनारे देखते हैं, समुद्र के किनारे, अरे यहाँ आ गए हम। और वो गई राम जी के चरणों के पास में, वो बूढ़ी माई राम जी का, महाराज काम आपका सिद्ध हो जाएगा। कैसे? बस वो मेरा फल खा लिया, वहां का जल पी लिया, अब कोई चिंता नहीं है। तब भगवान ने उसको अनुपायनी भक्ति दी और वो बद्री नारायण चली गई। इधर बंदर लोग सोचते हैं कि एक महीना तो हो गया, अब क्या होगा? तो भाई अब तो मारे जाएंगे। अंगद ने कहा, देखो आप लोगों को तो बात अलग है, मारे जाओगे कि नहीं, मैं तो जरूर मारा जाऊंगा, क्योंकि सुग्रीव जी अंदर ही अंदर मेरे से डर रखते हैं। मेरे चाचा जी वो देखते हैं कि युवराज जी कहां से आ गया, इसका बाप पहले राजा बना और मेरे मरने के बाद मेरे बेटे तो यही रह जाएंगे, ये राजा बनेगा। वो तो पिता के मरने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश करते थे, लेकिन राखा राम निहोरन ओई, राम जी ने जब मेरे को इस प्रकार से आश्वासन दे दिया, युवराज बना दिया, तब मैं रह गया, बच गया। अब ये मेरा बदला निकालेंगे नहीं अंगद, एक महीने तक तुम सीता को नहीं गए, हम तुमको प्राण दंड देंगे, हमने तुमको पहले ही कह दिया था ना, तो मैं तो मारा जाऊंगा। इसलिए अब हो गया सो हो गया, अब आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो बाबा यहां आसन लगा करके बैठ जाता हूं। सब बंदरों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक महीने के बाद, एक महीने की अवधि तो हो ही गई, अब वापिस जाएंगे तो क्या कहेंगे कि अवधि पूरी हो गई, सीता जी नहीं मिली, यही तो कहेंगे। और थोड़ा दिन और प्रयत्न कर लो और फिर सीता जी मिल जाएगी तो कहेंगे साहब अवधि तो पूरी हो गई लेकिन सीता जी का ज्ञान कर लिया, तो वो कहेंगे कोई बात बात, अवधि पूरी हो गई तो कोई हर्जा नहीं, सीता जी का ज्ञान तो हो गया, सीता जी का ज्ञान हो गया तो क्षमा कर देंगे। लेकिन इधर सीता जी का भी ज्ञान नहीं हुआ, उधर अवधि भी पूरी हो गई और वहां जाएंगे तो वो तो निश्चित मरना है, वहां तो क्षमादान का कुछ न कुछ जो है कारण तो बनेगा, वो खुशी आ जाएगी राजा को, कोई बात नहीं, एक महीने से ज्यादा समय लग गया, लग गया, सीता जी का काम हो गया। तो हम सीता के सुदली ने बिना नहीं गए हैं युवराज प्रवीणा। तो सब लोग वहां पर बैठ गए। अंगद जी, जामवंत जी ने अंगद को दुखी देख करके कहा, अंगद तुम अपने को नहीं जानते, बहुत ये गहरे वचन है या जामवंत जी के, देखो अंगद ये राम जी कौन है, ये साक्षात निर्गुण ब्रह्म अजित जन अजमा जानो, ये निर्गुण निराकार सच्चिदानंद अज अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा है, और ये सगुण साकार में अवतार लेकर हम लोगों को सेवा का मौका दे रहे हैं। बड़ा भारी भाग्य है कि ऐसे राम जी की सेवा का मौका मिल रहा है, वे भगवान अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, देवताओं का, गौओं का और ब्राह्मणों का और भक्तों का प्रिय करने के लिए। इसलिए सगुण उपासक संगत है रही मूच सब त्याग, बड़े बड़े भक्त लोग तो मोक्ष की इच्छा का त्याग करके भी इनकी आराधना करते हैं और अपने इनके पार्षद हैं, इनके सेवक हैं, इसलिए अपने को भी ये मौका मिला, दुखी नहीं हुआ करते। ऐसे ये बातें हो रही थी, इनकी कुछ कुछ बातें, पास में एक पर्वत था, उस पर्वत के अंदर संपाति वो सुन रहा था। इतने बंदर मरोगे तो तुम्हारा भोजन हमको मिलेगा, अरे बहुत समय बीत गया, खाली पेट पड़ा, भूख से मर रहा था, बहुत अच्छा हुआ, दिन बहु चले आहार बिन मरू, अब तुमको खा पी करके मरेंगे तो भाई कुछ तो शांति मिलेगी, अब तुम मरोगे और हम तुमको खाएंगे। भगवान ने देखो हमको घर बैठे कैसा अच्छा भोजन दिया, कितने मोटे मोटे आप लोग बंदर हो, आपका मांस खाने को मिलेगा, खून पीने को मिलेगा, हृष्ट पुष्ट बंदर हो, मरो तुम सब अनशन करके मरो और हम तुमको खाने में लग जाएंगे। और गीत तो सदाई मांस भक्षी होता ही है, तो तुम मर जाओ फिर हम तुमको खाएंगे। तो सब बंदर डरने लग गए। उस समय में अंगद जी कहने लगे, अरे एक तो वो गीत थे जिन्होंने राम जी की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए, बड़े भाग्यशाली वो गीत थे जो भगवान के धाम में चले गए, और एक ये गीत है जो हमारे प्राणों के प्यासे होकर हमारे मांस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो समय समय की बात है। संपाति ने कहा, अरे कौन हो, कौन से गीत की बात करते हो? कि वो जटायु की, जटायु तुम जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो गोदावरी के तट पर रहता था, राम जी का बड़ा सेवक था। अच्छा 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 अच्छा, त्रेतायुग आ गया क्या ये? हाँ ये त्रेतायुग आ गया। तो क्या राम जी ने अवतार ले लिया? हाँ अवतार। क्या उनकी सीता का हरण हो गया? ये आप कथा भी बोलते हो और हमसे प्रश्न भी करते हो, बात क्या है? अरे हम तुमको बताएं, बंदरों सुनो, ये जो जटायु है ये मेरा छोटा भाई है। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। क्या बताएं, पहले तो उसकी हमारे साथ बड़ी मित्र, हम दोनों गए सूर्य के पास में, दोनों ने होड़ लगाई। तो अब जब जो जो सूर्य के पास चले, जलन से हमारे पंख जलने लगे। जटायु छोटा था, मेरे मन में मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा, जटायु तू मेरी छाया में आ जाए। तो उसने कहा, भाई अब मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, मैं तो नीचे अब चला जाऊं, मेरे से अब आगे नहीं जाएंगे। देख मैं तो जाऊंगा, होगा जैसा होगा। तो वो तो नीचे आकर के जाने कहां गिर गया, मैं ऊंच पर उठ गया। जरे पंख अति तेज अपारा, फिर वहां पंख जलने लगे मेरे और मैं भी पृथ्वी पर गिर गया। और पृथ्वी पर गिरा तो मैं इस विंध्याचल पर्वत पर ही गिरा। और मेरे पास में एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उन्होंने इतना विशाल गीत मेरे आश्रम के पास गिरा तो दौड़े दौड़े आए, मेरे जले हुए पंख देखे, देखे उन्होंने इलाज किया, बहुत प्रकार से मेरे सांत्वना दी, ज्ञान भी कहा। और कहा कि देखो अभी तक तो तुम ठीक नहीं होगे, तो त्रेता युग आएगा और परब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे और फिर उनकी स्त्री का कोई राक्षस हरण करेगा। और उस स्त्री को खोजते खोजते जब उनके दूत तुम्हारे पास आएंगे और उन दूतों का तुम्हारे कर स्पर्श होगा, वो तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारे जले हुए पंख हैं उसकी जगह नए नए अच्छे पंख आ जाएंगे और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जो शरीर है एकदम बदल जाएगा, नया शरीर हो जाएगा। कोई चिंता मत करो, तुम हमारे पास ही पड़े रहो। इसलिए मैं कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई कब त्रेता आए, कब कोई राम अवतार लेने क्या है। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो मैं देख रहा हूं इस समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत है, पर्वत के ऊपर एक लंका है, उस लंका के अंदर रावण बिना किसी शंका के निर्भय होकर घूम रहा है। उसके पास बहुत से सेवक हैं और उनको तरह तरह से आदेश दे रहा है। और उस रावण के महल के पीछे एक बहुत विशाल अशोक वाटिका है और अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई, सोच मग्न बैठी हुई है। सब बंदरियों देखने लगे, अपनी देखो, अरे तुम क्यों समय खराब करते हो बंदरों, मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार, ये तुम नहीं देख सकते, हम देख सकते हम, क्योंकि हम गीध हैं। अरे अभी मैं अभी छलांग लगा के उड़ करके वहां चला जाता, लेकिन बुड्ढा हो गया, मैं भी तुम्हारी कुछ सहायता करता। मुझे चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा था कि जब तुम सीता की खोज करके बता दोगे तब उसमें तुम बंदरों को बताना कि देखो राम जी की कृपा कैसी होती है भगवान, ये देखो मेरे पंख, देखो मेरे पंख। बंदर यूं देखे हाथ लगाए, देखो भगवान का काम करते ही देखो मेरा शरीर कैसा, राम कृपा कस भयउ शरीर, मेरा शरीर देखो कैसा उज्जवल, कैसा सुंदर हो गया। बंदरों आप लोग हिम्मत मत तोड़ो, अपने मन को तोड़ो मत, विश्वास रखो। अरे पापी व्यक्ति भी जिनका नाम स्मरण करके भवसागर से पार हो जाता है, आज उन्हीं भगवान का आप लोग काम करने जा रहे हो। अरे वो पापी तो अपना काम बनाने के लिए भवसागर से पार होता है, आप राम जी का काम करने के लिए, ये पानी का सागर है कितना, उनको हृदय में धारण करो और चले जाओ, पार हो जाओ। इस प्रकार से गीतराज ने तो ये बात कह दी। काकभूषण जी कह रहे हैं कि देखो गरुड़, गीत तो इतनी बात कहकर के अपने खोहर में चला, अपनी जगह चला गया। खूब भगवान का स्मरण करते हुए आनंद में डूबा हुआ, आज हमको भगवान के इतने दूतों का दर्शन हुआ, इतने भक्तों का दर्शन हुआ, राम जी के काम में लगे हुए उनका दर्शन हुआ। गीत को तो भगवान के दर्शनों से ज्यादा आज आनंद का अनुभव हुआ, वो अपनी जगह चला गया। अब सब बंदर लोग सोचेंगे अब क्या करें, तो वे बंदर लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अब वो कौन किस प्रकार से करेंगे काम, ये सब कल के प्रसंग में आएगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम
सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुटवंशी वाले की, पवन सुत हनुमान की, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की, अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, आनंद